क्रांतिकारी आदिवासी चेतना का प्रतीक तेजिंदर का काला पादरी। दलित व नारी जीवन को पिछले कुछ वर्षों से लगभग सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान मिलना हासिल हुआ है, लेकिन इन दोनों सामाजिक समूहों से भी अधिक उपेक्षित व उत्पीड़ित आदिवासी समाज को भी अभी तक साहित्य में चर्चा के केंद्र में नहीं लाया गया था। यद्यपि उड़िया में गोपीनाथ महंती, प्रतिभा राय व बंगला में महाश्वेता देवी व अन्य कई भाषाओं के लेखकों ने आदिवासी जीवन को आधार बनाकर महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं, किंतु आदिवासी केंद्रित साहित्य अभी तक साहित्यिक धारा या विमर्श का रूप धारण नहीं कर पाया था। हिंदी में तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अनेक आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के बावजूद अभी तक विपुल मात्रा में आदिवासी केंद्रीय साहित्य सृजन भी नहीं हुआ था। हाल में रमणिका गुप्ता ने अपनी पत्रिका युद्धरत आम आदमी के दो अंक आदिवासी साहित्य पर केंद्रित किए हैं, किंतु सही मायनों में हिंदी भाषी क्षेत्र में आदिवासी जीवन को केंद्र में रखकर पहली बड़ी सृजनात्मक रचना तेजिंदर के उपन्यास काला पादरी के रूप में छपकर सामने आई है। 130 पृष्ठों को तेजिंदर का यह उपन्यास मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले के धुर भीतरी आदिवासी जीवन पर केंद्रित है और आकार के लघु होने पर भी संवेदना में सघन होने से यह उपन्यास आने वाले वर्षों या दशकों तक एक अछूते विषय को अत्यंत परमस्पर्शी ढंग से प्रस्तुत करने के कारण चर्चा में रहेगा। तेजिंदर इससे पहले भी अपनी रचनाओं में अपनी सिंसियरिटी के कारण हिंदी के कुछ अत्यंत विरल रचनाकारों में माने जाते हैं। पंजाब की स्थिति को केंद्र में रखकर रचा गया उनका बहुचर्चित उपन्यास वह मेरा चेहरा हो या हाल के वर्षों में चर्चा में आया काला आजार उपन्यास। तेजिंदर की प्रतिष्ठा हिंदी में एक ऐसे उपन्यासकार के रूप में स्थापित हुई है जिनका सर्वप्रथम सरोकार मानव जीवन में मानवीय अस्मिता व सम्मान की भावना को सृजनात्मक रूप देना है। वैचारिक रूप में तेजिंदर प्रगतिशील व तार्किक वैज्ञानिक मानववादी विचारधारा से प्रभावित हैं, किंतु अपने सृजन में वे विचारधारा से आक्रांत न होकर मानव जीवन के छोटे छोटे मगर सजीव प्रसंगों द्वारा अपनी रचना को प्राणवान बनाते हैं और हमेशा मानव जीवन के ऐसे कणों को तलाशते रहते हैं जहां कोई सुविधा भोगी लेखक देखने की हिम्मत नहीं करता। तेजिंदर अपने रोजगार में जगह जगह बदलियों को भी अपने सृजन का सशक्त साधन व माध्यम बना लेते हैं। हाल के वर्षों में वे संबलपुर में दूरदर्शन में रहे तो उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों की दुर्गम यात्राएं करते हुए कथा देश में उन्होंने अपने मर्मस्पर्शी संस्मरण लिखे। आदिवासी जीवन के साथ उनका संबंध बचपन से ही रहा है, जिसकी एक झलक वह मेरा चेहरा उपन्यास में भी है। अपने बचपन से आदिवासी जीवन के निकट पर्यवेक्षण व सरोकार से जुड़े तेजिंदर ने काला पादरी उपन्यास के रूप में एक ऐसी उपन्यासिक रचना की है जिसमें उनका वर्षों दशकों से पका अनुभव एक मार्मिक रचना के रूप में अभिव्यक्ति पाने में सफल हुआ है। तेजिंदर न सिर्फ गैर आदिवासी हैं वह गैर मध्य प्रदेशी भी हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पंजाब के कपूरथला जालंधर क्षेत्र की है। उनकी स्थिति पंजाब के ही इस क्षेत्र के एक अन्य बहुचर्चित उपन्यासकार जगदीश चंद्र से मिलती है। होशियारपुर जिले में जन्मे पले जगदीश चंद्र ने बचपन से दलितों के जीवन को निकटता व गहरे मानवीय सरोकार से पर्यवेक्षण कर दलित जीवन की त्रासदी पर एक बृहत उपन्यास त्रयी धरती धन अपना, नरक कुंड में वास व जमीन अपनी तो थी की रचना द्वारा हिंदी में क्लासिकल सृजन किया। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसी भौगोलिक क्षेत्र के तेजिंदर ने मध्य प्रदेश के आदिवासियों के जीवन के साथ वही गहरा मानवीय लगाव निभाते हुए काला पादरी के रूप में एक ऐसी औपन्यासिक रचना की है जो हिंदी में आदिवासी केंद्रित साहित्य की एक प्रमुख धुरी बनकर उभरेगी। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र को निकट से जानने वाले प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार उदय प्रकाश काला पादरी को बिल्कुल ही अप्रत्याशित उपन्यास का दर्जा देते हुए इसे इतिहासेतर आख्यान के रूप में उपन्यास की पहचान बताते हैं। हिंदी में पहली बार जेम्स खाखा, सोजेलिन मिंज व अनास्तासिया जैसे नामों वाले चरित्र सामने आए हैं। इन नामों से उपन्यास किसी विदेशी उपन्यास का अनुवाद भी जान पड़ सकता है, क्योंकि अधिकांश पढ़े लिखे भारतीयों को भी भारतीय जनों के ऐसे नाम होने का इल्म नहीं है। लेकिन ईसाइयत के प्रभाव में देश के अनेक आदिवासी या अन्य समूहों में ऐसे नाम रखे गए हैं और रखे जाते हैं। उपन्यास में आदिवासी जीवन का वृत्तांत एक गैर आदिवासी बैंक अधिकारी आदित्य के माध्यम से बुना गया है। उपन्यास में इतिहास, कथा व भौगोलिक वृत्तांत की पत्रकारिता शैली तीनों का अनूठा सम्मिश्रण हुआ है। उपन्यास के आरंभ में भोपाल से स्थानांतरित होकर अंबिकापुर जाने वाले बैंक अधिकारी आदित्य द्वारा इस पूरे आदिवासी क्षेत्र का भौगोलिक वृत्तांत दिया गया है, किंतु यह वृत्तांत शुष्क न होकर बड़ी दिलचस्प शैली में अभिव्यक्त हुआ है। इस वृत्तांत में उस क्षेत्र व साथ ही हमारी व्यवस्था की यथार्थ स्थिति तो उघाड़ती ही है, किंतु उपन्यास की आने वाली कथा में पाठक की जिज्ञासा भी जागृत होती चलती है। लेखक ने अंबिकापुर के रास्ते में पड़ने वाले अनूपपुर स्टेशन के उच्च श्रेणी के विश्राम गृह की स्थिति इन शब्दों में अभिव्यक्त की है। विश्राम गृह इस कदर बदबू से भरा था कि वहां बैठे अधिकांश लोग जैन मुनियों की तरह नाक और मुंह पर पट्टी बांध कर बैठे थे। यहां तक तो सिर्फ स्थिति का व्यंग्यात्मक चित्रण ही है। यह स्थिति काले हास्य ब्लैक ह्यूमर का रूप ले लेती है। जब विश्रामगिरी में ही एक कुत्ता एक बक्से के ऊपर पेशाब करता है, पेशाब की धार बक्से के नीचे इत्मीनान से सोए किसी मुसाफिर के सिर पर पड़ने लगती है। अंबिकापुर के चर्च में पृष्ठ है जम खाखा। इस क्षेत्र के गांव के अत्यंत गरीब आदिवासी घर का युवा बेटा है, जिसके पिता ने ईसाई धर्म ग्रहण कर अपने बच्चों को पढ़ाया है और अब बच्चे बड़े होकर पृष्ठ पद तक पहुंचे हैं। खाखा की बहन सिस्टर अनास्तासिया भी नन है। इस काले पादरी से उपन्यास के प्रमुख चरित्र की दोस्ती के साथ ही इस ईमानदार बैंक अधिकारी के सामने आदिवासी जीवन के यथार्थ की ऐसी परतें खुलने शुरू होती हैं जिसकी पूरी पूरी सहानुभूति आदिवासी समाज से जुड़ जाती है और उनके जीवन को वह उनका आत्मीय बनकर अधिकाधिक निकटता से देखता व महसूस करता है। तेजिंदर ने अनूपपुर से विश्राम गृह तक की रेल यात्रा का विवरण दिलचस्पी से किया है। यहाँ तक कि रास्ते में पड़ने वाले लगभग सभी स्टेशनों को बच्चों जैसी मासूमियत से बयान किया है। मौहरी, हरद, कोतमा, बयाहा टोला, विजुरी, बोरीडांड जंक्शन, अलगधार, दर्जी टोला नगर, वैकुंठपुर रोड, करोरा, शिवप्रसाद नगर, सूरजपुर रोड, करंजी व विश्रामपुर। जिम्स खाखा के साथ आदित्य नमना कला के गिरजाघर में जीव से आ जाता है और फिर उसी के साथ आदित्य सरगुजा जिले के भीतरी आदिवासी क्षेत्र की मानवीय स्थितियों को देखता, समझता व महसूस करता है। तेजिंदर ने राही मासूम रजा के आधा गांव की तरह ही काला पादरी में उपन्यास के बीच में ऐतिहासिक वृत्तांत को औपन्यासिक टेक्निक के रूप में प्रयोग किया है। लेखक ने सिर्फ तीन पृष्ठ के हस्तक्षेप द्वारा इस क्षेत्र के आदिवासियों का लोक प्रचलित व ऐतिहासिक रूप में दर्ज वृत्तांत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार इस क्षेत्र के उरांव आदिवासी रावणापूत या और रावण से बने उरांव से विकसित हुए हैं। उरांव को कडूह भी कहा जाता है, जो द्रविड़ भाषा में भाषिक रूप से कन्नड़ के करीब है। उरांव समूह के उद्गम स्थल संबंधी प्रामाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन यह भारतीय प्रायद्वीप की आदिवासी जाति है। उरांव छोटा नागपुर क्षेत्र में आए हैं और वहां रह रहे मुंडा जाति से मिलकर उन्होंने गैर जातीय नामवंशी फणी मुकुट राय को राजा चुना। पहली शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक के हिंदू काल में उरांव स्वतंत्र और स्वायत्त रहे। मुगल काल में इस क्षेत्र को झड़खंड नाम मिला। मुगल काल में आदिवासी राजा दुर्जन साल से मुगल शासकों के संबंध बिगड़ने पर राजा को 12 साल तक ग्वालियर के किले में कैद कर रखा गया। राजा दुर्जन साल ने बाहर आकर आदिवासी जीवन शैली छोड़कर गैर आदिवासी संस्कृति अपनाई। सन 1765 में इस क्षेत्र में अंग्रेजी राज्य स्थापित हुआ, जो लगभग 200 वर्ष तक चला। 1869 के आसपास कैथोलिक मिशनरी इस क्षेत्र में आए और उसके बाद ही इस क्षेत्र के आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाना शुरू किया। जेम्स खाखा के अनुसार मिशनरियों ने आदिवासी जीवन की शैली को समझकर उनके रीति रिवाजों व संस्कारों को स्वीकार कर उन्हें ईसाई धर्म का विकल्प दिया, जिसे आदिवासियों ने खुशी से स्वीकार किया। वास्तव में काला पादरी उपन्यास में भारत के सर्वाधिक उत्पीड़ित व उपेक्षित आदिवासियों की जीवन स्थितियों के अनेक पहलुओं को लेखक ने समाजशास्त्रीय दृष्टि किंतु साथ ही लेखकीय संवेदना के इस ढंग से चित्रित किया है कि भारतीय समाज की जटिलता भी उभर कर सामने आती है और साथ ही आदिवासियों के जीवन की पीड़ा का मार्मिक अंकन भी लेखक की कलम से होता चलता है। लेखक द्वारा हस्तक्षेप में भी ऐतिहासिक वृत्तांत से लगता है कि आदिवासी समाज की मुश्किलें समाज में ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा पूंजीवादी अर्थतंत्र विकसित करने की कोशिश में बढ़ी। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत या अन्य उपनिवेशों में पूंजीवादी अर्थतंत्र सिर्फ अपने व्यापारिक हितों को बढ़ाने के लिए विकसित किया, और यह अर्थतंत्र इतने विकृत रूप में विकसित किया गया व साथ ही इसके पोषण के लिए एक उत्पीड़क राजकीय व्यवस्था पहले से ही उपनिवेशवाद ने विकसित कर रखी थी। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में बोए इन विषैले बीजों का भरपूर प्रतिफलन 1947 के बाद हुआ, और अब इसके विषैले फणों ने पूरे भारतीय समाज को ऐसी कटीली जकड़न में जकड़ दिया है कि आने वाले कई दशकों तक इस जकड़न से मुक्ति का भी कोई रास्ता नजर नहीं आता। वास्तव में उपन्यास की रचना के पृष्ठभूमि में उड़िया के आदिवासी क्षेत्र में पादरी स्टेंज की हिंदू मतांधों द्वारा की गई नृशंस हत्या का प्रभाव भी है। आदिवासी समाज भारतीय समाज के उच्च व शोषक वर्गों के लिए शोषण की अनंत सामग्री प्रदान करता है, इसलिए शासक वर्गों के सभी हिस्से इस आदिवासी समाज को अपना नरम चारा समझते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जमाने में ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा व धर्म प्रसार की आड़ में इन आदिवासियों में अपनी जड़ें जमाई। उन्होंने मूलवादी व मतांध हिंदू धार्मिक नेताओं की तरह उन्हें अपने में जबरदस्ती समाहित करने की बजाय कुछ हद तक उनका मन जीत कर व सुविधाएं देकर अपना अनुयायी बनाया। 1947 के बाद आदिवासियों को ईसाई पृष्ठभूमि के साथ ही अपनाकर अपना सामाजिक आधार बनाया। 7वें दशक तक आते आते बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी फासिस्ट संस्थाओं ने भी आदिवासी क्षेत्रों में पांव पसारने शुरू किए, और भारतीयता और विदेशी खोखले नारों द्वारा इन क्षेत्रों में पुनः धर्मांतरण आदि आंदोलनों द्वारा सामाजिक तनाव बढ़ाया ताकि कांग्रेस पार्टी से उसका जनाधार छीन कर सत्ता भी छीनी जा सके। अपने इन प्रयासों में वे सीमित हद तक सफल भी हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी 3-4 दशक की सत्ता केंद्रित राजनीति में आदिवासियों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की तरह ही किया, और जब इन क्षेत्रों में सूखा या अकाल पड़ता है और सैकड़ों गरीब आदिवासी भूख से मरने लगते हैं तो तीनों पक्ष, कांग्रेस पार्टी या हिंदुत्ववादी या फिर ईसाई धर्म के अग्रिम नेता, पहले यह देखना चाहते हैं कि भूखों को अनाज देकर इन्हें अपना अनुयायी बनाया जा सकता है या नहीं। काला पादरी में भी जेम्स खाखा के इस संबंध में यह प्रश्न करने पर कि यहाँ के अकाल वाले गाँव में चावल क्यों नहीं बंटवा सकते, बिशप स्वामी का लंबा विश्लेषण है कि कांग्रेस और बीजेपी व पैलेस की नीतियों और व्यवहार को देखने के बाद ही कोई फैसला हो सकता है। जेम्स खाखा, जो खुद आदिवासी समाज का अभिन्नंग है व जिसके पिता अत्यंत गरीब आदिवासी थे, कि इस विश्लेषण के बाद भी सीधी सरल टिप्पणी है, पर पता नहीं बिशप, मुझे लगता है कि चर्च को भूखे लोगों का साथ देना चाहिए। बिशप स्वामी बड़े निरपेक्ष भाव से प्रत्युत्तर में कहते हैं, चर्च का उत्तरदायित्व केवल अपने विश्वासियों के प्रति है, अर्थात आदिवासी समाज या मनुष्य मात्र से किसी का सरोकार नहीं है, न बीजेपी या हिंदुत्ववादियों का, न कांग्रेस या पैलेस का, और न ही ईसाई धर्म के नेताओं का। भारतीय समाज के जटिल यथार्थ के इस रूप का तेजिंदर ने काला पादरी में अत्यंत सघन स्तर पर चित्रण किया है। तेजिंदर अपने लेखकीय दायित्व को यथार्थ के इस आलोचनात्मक चित्रण तक ही सीमित नहीं रखते, वे इससे और भी आगे बढ़कर आदिवासी समाज में आ रही जागृति व समाज के बीच के अंतर्विरोधों में ही कहीं न कहीं बहुत कमजोर ही सही लेकिन सकारात्मक पहलुओं को भी रेखांकित करते चलते हैं। जैसे अकाल की स्थिति में आदिवासी समूहों द्वारा सेठों के काले धंधे की इच्छा से दबाए चावलों के स्टोर को लूटना, और इस लूटपाट के बाद एक ईमानदार जज द्वारा उन आदिवासियों को केवल एक दिन के सांकेतिक कारावास की सजा के बाद रिहा कर देना, और साथ ही पुलिस और प्रशासन को जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत देना, जेम्स खाखा को अदालत का यह निर्णय ऐतिहासिक और क्रांतिकारी प्रतीत होता है। लेखक ने जेम्स खाखा व स्विट्जरलैंड मिंज के बीच पनप रहे अत्यंत संवेदनशील संबंधों का चित्रण बड़ी मार्मिकता से किया है। ईसाई धर्म के प्रचारक होने के नाते वे दोनों दैहिक प्रेम संबंध सोच नहीं सकते, किंतु किसी भी धर्म के प्रचारक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले प्रबल परस्पर आकर्षण से बच नहीं सकते, और कई बार उनका पूरा जीवन इस प्राकृतिक लालसाओं के दमन में गुजर जाता है। किंतु जेम्स खाखा व स्विट्जरलैंड मिंज का परस्पर आकर्षण ऐसे स्वाभाविक रूप में पनपा व विकसित होता है कि लेखक व पाठक की संवेदना इन चरित्रों के साथ जुड़ती जाती है। खाखा की बहन सिस्टर अनास्तासिया भी मानवीय प्रेम और ईश्वरीय प्रेम के द्वंद्व से गुजरी अपनी माँ के पास गांव लौट आई है। मानवीय प्रेम के दायरे में केवल युवा स्त्री पुरुष का दैहिक आकर्षण ही नहीं, हर तरह का प्रेम, माता पिता व बच्चों, भाई बहनों व मित्रों का भी प्रेम शामिल है। ईश्वरीय प्रेम से हर तरह का मानवीय प्रेम टकराता है और काला पादरी का लेखक किसी भी तरह के मानवीय प्रेम को ईश्वरीय प्रेम से अधिक तरजीह देता है। जेम्स खाखा को हो या स्विट्जरलैंड मिंच या स्वयं आदित्य, उपन्यास के सभी चरित्र मानवीय प्रेम के उदात्त स्वरूप के प्रतीक बनकर उपन्यास में प्रस्तुत होते हैं। जेम्स खाखा उपन्यास का सर्वाधिक शक्तिशाली चरित्र बनकर उभरता है क्योंकि वह आदिवासी अस्मिता का प्रतीक के रूप में विकसित होता है। जेम्स खाखा आदिवासी समाज की पीड़ाओं व संघर्षों का सपुंजित व ज्वलंत प्रतीक बनकर प्रस्तुत होता है। उसके पिता अलेक्जेंडर खाखा ने 1932 में बेल्जियम से आए पादरी मैथ्यूज से ईसाई धर्म में दीक्षा ली थी। इस पादरी ने बचपन में जेम्स खाखा को चॉकलेट भी खिलाए थे। अंबिकापुर के 150 मील की दूरी पर स्थित इस गिन्ना बहार गांव में अब खुद पादरी बन चुके जेम्स खाखा 87 वर्षीय बेल्जियम पादरी मैथ्यूज को संबोधित होकर कड़वी सच्चाई बयान कर देते हैं। क्या यह सच नहीं है कि हमारी इमेजेस में पहाड़ थे, नदियां थीं, पेड़ थे, शेर थे, चीते थे और राजा ने हमें बंधुआ बना दिया, फिजिकली और इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट किया, लेकिन आपने क्या किया? यू रादर टेम्प्ट अस, आपने हमें पालतू बना दिया। हमारे लिए हिंदू फंडामेंटलिस्टों और आप में अब कोई फर्क नहीं है, हमारी सारी इमेजेस छीन ली आप लोगों ने, जेम्स खाखा ने कहा। जेम्स खाखा के व्यक्तित्व के इसी प्रखर व मानवीय रूप ने आदित्य को प्रभावित किया है और इसी से वह खाखा के साथ सुदूर भीतरी गांव में जाकर आदिवासी जीवन के सच्चाइयों को नजदीक से देखता है। उन्हीं के साथ वह अंबिकापुर से 30 किलोमीटर दूर गांव महेशपुर जाता है, जिसमें 85 परिवार हैं और जिसकी आबादी सिर्फ 500 है। महेशपुर गांव के 70 वर्ष से अधिक की आयु के ईसाई पादरी और 35 वर्ष से अधिक के सिस्टर दोनों को आदिवासियों का धर्मांतरण करवाने के आरोप में 6 माह का कड़ा कारावास दिया गया है। यह गांव जेम्स खाखा के छोटे भाई के ससुराल भी है और इस गांव में जहां एक बुजुर्ग माइकल टोप्पो के बारे में उसकी लड़की लुइसा की टिप्पणी है कि वे यीशु के मंदिर में प्रार्थना की बेगार कराते हैं। वहीं इसी गाँव की तुतलाती बच्ची अपना लीडर छोनिया गांधी को बतलाती है और इसी क्षेत्र के जुदेव 1 लाख आदिवासियों के पुनः हिंदुत्व में धर्मांतरण की कस्में खाते हैं। अंबिकापुर से 35 किलोमीटर पर एक गांव और गांव है मेटहरा, कुल 30 घरों का। इस गांव में कुछ भी नहीं था, न बिजली, न स्कूल, न तालाब, न मंदिर और न कोई गिरजाघर। कुछ बकरियां थीं और कुछ मुर्गियां। इस क्षेत्र के आदिवासियों में प्रार्थना प्रचलित है कि प्रभु इस वर्ष हमारे घरों को तोड़ने हाथे जरूर भेजना, क्योंकि भूख के मारे आदिवासियों को कुछ मुआवजा मिलता है जिससे 6 महीने के लिए अनाज खरीद लेते हैं। झोपड़ा खड़ा करने के लिए खपरेल आदि वे जुटा लेते हैं और इस क्षेत्र का लीड बैंक, जो आदिवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए खोला गया है, उसका इस्तेमाल यहाँ के शोषक पैलेस सेठ लोग करते हैं। बैंक के 17 कर्मचारी अधिकारियों में अधिकांश भ्रष्ट हैं और आदित्य को यह नेक सलाह दी गई है कि वह पैसे नहीं लेना चाहता तो चुप रहे। आदिवासियों से संपर्क रखने व जेम्स खाखा से अपनी दोस्ती रखने पर भी बैंक मैनेजर उसे वार्निंग दे डालता है, लेकिन आदित्य और जेम्स खाखा अपनी दोस्ती से अपनी मानवीय संवेदनाओं को और सशक्त बनाते हैं। वे एक दूसरे से दुख सुख बांटकर मानवीय संबंधों का गरिमामय व स्निग्ध रूप प्रस्तुत करते हैं। आदिवासी जीवन के जटिल यथार्थ का एक और अद्भुत चरित्र है ब्रदर हरपाल, जो पैदा तो हुआ सिख परिवार में पंजाब के लुधियाना जिले में, लेकिन आ गया है सरगुजा के आदिवासियों में ईश्वरीय आदेश के तहत सेवा करने और यहाँ वह चंगाई शिविर लगाता है और ब्रदर हरपाल चंगाई कहलाता है। धर्म की मिथ्या चेतना कितने और कैसे कैसे रूप धारण कर मनुष्य को प्रभावित कर सकती है, हरपाल इसका एक प्रतीक चरित्र बनकर खाला पादरी में प्रस्तुत हुआ है। आदित्य उसके प्रति कुछ सख्त रवैया अपनाता है, किंतु स्विट्जरलैंड उसे ऐसा सोचने से रोकती है। खाखा शब्द का अर्थ काला पक्षी है। एक तरह से काला पक्षी खाखा आदिवासियों का टोटेम है। जेम्स खाखा उसी काले पक्षी की आत्मा को भी अपने में समाहित किए हुए हैं। जेम्स की इस प्रखरता को कुंद करने के लिए उसे चर्च द्वारा रोम भेजने का प्रस्ताव किया जाता है। यह एक कठिन चयन है। रोम का आकर्षण धार्मिक दायरे में करियर एडवांसमेंट या अपने समाज के प्रति प्रतिबद्धता। जेम्स खाखा का चरित्र जिस रूप में विकसित हुआ है उसके कारण वह अंतर्द्वंद में और भी तीखा है। सुजलिन मिंज का आकर्षण इस अंतर्द्वंद को और तीव्र बना देता है। उपन्यास के इस अंतिम किंतु तनाव से भरे माहौल में बिशप स्वामी और जेम्स खाखा के बीच दलित प्रश्न पर राजनीतिक चर्चा भी होती है। बिशप के लिए कांशीराम, मायावती या लालू मुलायम प्रवृत्ति सत्ता में दलित हिस्सेदारी बढ़ाने वाली प्रवृत्ति है। जेम्स खाखा के माध्यम से तेजिंदर ने धर्म और धर्म ग्रंथ के भीतर की दो व्याख्याओं, मानवीय व मानव विरोधी को भी बड़ी कलात्मकता से उकेरा है। जेम्स खाखा बाइबल की मानवीय व्याख्या करता है किंतु धर्म या चर्च का करियर के लिए इस्तेमाल नहीं करता और वह अंततः वह रोम न जाकर स्विट्जरलैंड के साथ वहीं अपने आदिवासी समाज के बीच साधारण नागरिक के रूप में रहने का निर्णय लेता है। इस बीच आदित्य का तबादला अंबिकापुर से नागपुर हो जाता है और जेम्स खाखा व स्विट्जरलैंड द्वारा उसे स्टेशन पर विदाई के दृश्य से उपन्यास का इन सकारात्मक शब्दों से अंत हो जाता है। जेम्स खाखा और स्विट्जरलैंड मिंज मुझे आसपास पहाड़ियों पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार पिछले वर्षों से हिंदी में दलित धारा के सृजनात्मक परिवेश में एक अत्यंत सशक्त कृति शामिल हो जाती है, काला पादरी। वास्तव में आदिवासी जीवन की जटिलताओं और उसके बीच आदिवासी जागरण का जैसा चित्र यह कृति प्रस्तुत करती है, ऐसा चित्र हिंदी कथा साहित्य में लगभग पहली बार ही प्रस्तुत हुआ है। हिंदी में शुरू हुए दलित विमर्श को यह कृति आदिवासी विमर्श तक ले जाकर उसे एक नया आयाम भी देती है और इस आयाम से इस धारा को सशक्त भी बनाती है। जगदीश चंद्र के उपन्यास धरती धन अपना, नरकुंड व्यवास व जमीन अपनी तो थी कि दलित जीवन के यथार्थ के सशक्त चित्रण की ही अगली कड़ी है। आदिवासी जीवन के जटिल यथार्थ का अत्यंत मार्मिक और कलात्मक चित्रण करने वाले तेजिंदर की औपन्यासिक कृति काला पादरी। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस रचना से दलित व आदिवासी जीवन पर केंद्रित हिंदी साहित्य पर राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और ध्यान दिया जाएगा व हिंदी का दलित साहित्य मराठी दलित साहित्य की परंपरा के कुछ और निकट आकर नई ऊर्जा ग्रहण करेगा।